Hearing check.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशी आमदीद कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई जिसने मुझे मैसेज किया था 0264। अपने रवैये पे थोड़ी सी नजरसानी जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने रवैये पे नजरसानी जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि अगर कभी गलत हो रहा हो ना, तो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा यह है कि गलत को गलत कहा जाए। इतना जरूर सोचिएगा, अपना थोड़ा सा जायजा जरूर ले लीजिएगा। ना तो मैंने पॉलिटिक्स में आना है और मुझे यकीन है ना आप ही ने पॉलिटिक्स में आना है, मगर वतन के साथ जो ज्यादती होती है उसके बारे में थोड़ा सा तज्जिया जरूर कीजिएगा, क्योंकि तारीख अपने आप को हमेशा हमेशा जरूर दोहराया करती होती है। और अगर आप तारीख के औराक को उठा के देखते हैं तो हम में से हमारे अपने लोगों ने ही तारीख को उलट पलट के रख दिया था, यानी अपनों को मरवाने में पेश रहे थे। मैं बड़े गम के साथ इस बात का इजहार करती हूं कि हम तो वो लोग हैं जो हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुनिया वजूद में आई थी, और आज अगर आप देखते हैं तो आज आप इमेजिन कीजिएगा कि और हम में से ही खड़े होके रसूल के नवासों को जिनको वो बोसा दिया करते थे, जिनको वो अपने कंधों के ऊपर करते थे, मरवाने वाले भी हम ही थे। क्या जोर क्या था? इक्तदार का जोर था और तो कुछ भी नहीं था। एनीवेज, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साजोबाज में आपके साथ जनाब करामत लवारी साहब भी आने। वो कहते हैं ना, गरीब आदमी गरीब दा बाल फंसे होया। इन्नी देर में इंतजार कर दी थी, अद्धे घंटे तो मैं इंतजार कर रही थी, हूं जदों आए तो दो बड़ी शख्सियात मेरे साथ शामिल हैं। आई हैव सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जनाब करामत लवारी साहब, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। वारी साहब यहां तशरीफ फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
I have another wonderful personality and I thank him very much. Shaheen Sahibai sahab bhi mere saath on the other side of the line hai. Actually, he was supposed to be here with us around 3:30, magar wo kehte hain na technical problems har jagah aati hain. Hum to phir wahi apne resources mein chalne wale log hain, to wo system kahin na kahin dhoka de gaya tha. Janab Shaheen Sahibai sahab, hum aapko khush aamdeed kehte hain. Assalamu alaikum sir.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा सलाम करामत साहब को भी और आपको भी। मैं आपकी बातें सुन रहा था थोड़ी देर पहले।
जी सर,
बड़ी इंस्पिरेशनल बातें आप कर रही थी, बड़ी टू द पॉइंट और दिल को लगने वाली, और समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब बातें आप कर रही हैं और लोग सुन रहे हैं और फिर भी किसी पे कोई असर क्यों नहीं होता,
नहीं होता। जी सर,
यही बात
सर, मैं ये आपको दिखा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इस आर्टिकल को आज लेके भी जाऊंगा। यूएस टॉपलिंग ऑफ माजरत की ख्वास्तकार हूं, और ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं आर्टिकल लिखा, ये जेफ सैक्स जो है उन्होंने ये इसको उन्होंने आर्टिकल लिखा। आपको गम होना चाहिए कि आपके घर इतना कमजोर क्यों है कि रोज आपकी गवर्नमेंट टॉपल हो जाती हैं, और ये किसी एक की मौत के ऊपर जश्न मनाने वाली बात नहीं है। और अगर यही होता रहा तो अल्टीमेटली कमजोर कौन सा होगा? कमजोर होगा मेरा पाकिस्तान। और मैं ये कहती हूँ तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, दे मस्ट गेट टुगेदर एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद, कि उस सिस्टम को तोड़ा जाए जो इनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल करता है, ताकि एक हुकूमत एक दौरानिया अपना पूरा कर सके। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शामिल हुए। अभी मैं आपका एक ट्वीट, सॉरी आई हर्ड, आई स्वेयर टू गॉड, मैं 0264, आई स्वेयर टू गॉड आपने मुझे हर्ट किया है, बिकॉज यू नो मी 25 ईयर्स। आप मुझे 25 साल से जानते हैं, मैं खुदा गवाह है, आई ओनली लव पाकिस्तान, मेरे लिए कोई पार्टी कुछ नहीं है, मगर मुझे गम होता है कि मेरा घर इतना कमजोर क्यों है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, हर बंदा मेरे घर आता था तो मुझे कहता था बच्चे को स्कूल से उठा लो, तुम अब ये घर को बेच दो, तुम गुजारा नहीं कर सकोगी, मगर आई स्टूड अप, अल्लाह की मैंने मदद मांगी, आई वर्कड, मैंने अपने घर को संभालने के लिए हर तरह से कोशिश की। मेरा घर है पाकिस्तान, मेरा मुल्क है पाकिस्तान। जब मैं उसको टूटता देखती हूँ, जब मैं हर आदमी को उन दीवारों में से गुजरते हुए रास्ता बनाते देखती हूँ, आई फील सैड, میں یہ کہتی ہوں یہ بدلے کی سیاست ختم ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کی انتہا ہونی چاہیے. آج آپ پاکستان کے عوام کو کتنا بے وقوف بنائیں گے. اگر کسی کا کینسر کا علاج ہوتا تھا، آپ نے کینسر کے اسپتالوں کو بند کر کے کیا کرنا ہے؟ غریب کا علاج نہیں ہوگا، امیر اپنے بچے کو لے کے امریکہ چلا جائے گا. ابھی جنرل راحیل شریف، آپ کو پتا ہی ہے ان کی وائف واز ڈائگنوزڈ ود کینسر. جنرل راحیل شریف کی وائف کو کینسر ہوا، شی واز ٹریٹڈ ان سعودی عربیہ، ناؤ شی کیم ان امریکہ. امیر لوگ تو یہاں وہاں چلے جائیں گے، غریب آدمی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا علاج کرانا چاہتا ہے. مجھے غم صرف اس کا ہے. شاہین سے بھائی صاحب، ابھی میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی، اور جی سر بتائیے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی، کیا فرمائیں گے آج جب دو دن رہ گئے الیکشن میں. آج پاکستان سے میرا انٹرویو تھا جناب وجاہت صاحب، جو پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹ کے لیے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا، ان کے بھائی کو بھی اریسٹ کر لیا. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جہانگیر ترین کے علاقے میں جو ممبر پارلیمنٹ ان کے اپوزٹ آ کے کھڑی ہیں، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ کیا ہو کیا رائے آپ آج کے دور میں؟ دس از ناٹ 1971، دس از گلوبل.
دیکھیے میڈم، یہ ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے کہ جی ہم نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، اور یہ چند لوگوں نے جو ٹاپ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بس مل کے ایک ٹارگیٹ رکھ لیا ہے. کسی کو نیچے جو ہے نا، وہ بہت سے اکثر لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے، مگر زبردستی کر کے انہوں نے کہا ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور پرسنل ذاتی اور انا کے مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب وہ یہ کرے جا رہے ہیں، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا مجھے تو نہیں یاد. اتنے 50 سال ہو گئے میرے، کتنے الیکشنز بھی دیکھ چکا میں، کور بھی کر چکا. اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ کی گئی ہو کہ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل ہلنے بھی نہیں دینا، نہ نام لینا ہے اس کا، نہ تصویر آنی ہے، نہ اس کا کوئی بندہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وہ جیل، سارے جیل میں پکڑ کے رکھ دیا انہوں نے، مار دیا عورتوں کو، کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ایک بات دیکھیے، دو باتیں ہوئی ہیں جو وہ اچیو نہیں کر سکتے اور پوری طرح فیل ہوئے. ایک تو یہ کہ عمران خان کو وہ اس ساری باوجود توڑ نہیں سکے، اور سب کچھ کر لیا انہوں نے، گھروں کے ان کے یعنی بہت غلیظ ترین الزامات لگا دیے، توشہ خانہ کیس کہہ لیں اور کہہ لیں، یہ سب بیکار کے کیس سب تھوپ دیے، سزائیں زبردستی دلوا دی، سب کچھ کر دیا، مگر وہ توڑ نہیں سکے. ایک دو بات یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ عوام کو عمران خان سے الگ نہیں کر سکتے، اور یہ ابھی تک ان کی جو محبت ہے، ان کی سپورٹ ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سڑکوں پہ نکلے پروٹیسٹ کرے نہ کرے، جو بھی کرے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جب موقع آئے گا، وقت آئے گا ہمارا، 8 تاریخ کو جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم جا کے پھر اپنا بدلہ، جو بھی بدلے ہیں، جو بینظیر کہی تھی ایک دفعہ کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، لیکن جب ڈیموکریسی کا ریونج تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جی آپ جا کے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں اور پھر یہ اس کا کچھ بھی نہ کر سکے، بھلے جتنی دھاندلی دھاندلا جو بھی کر لیں، لیکن یہ کچھ نہ کرتے. تو یہی ان کا ریونج ہے. اور اگر یہ دو چیزیں تو یہ فیل ہو گئے. اور اب میں نہیں کہہ رہا بلکہ بڑے بڑے ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو کہ کہتے رہے ہمیشہ ساری عمران خان کے خلاف اور سب کے ان کے حق میں باتیں کرتے رہے ہیں، جیسے نظم سیٹھی صاحب ہیں، وہ آج اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو 3 سزائیں ان کو ملی ہیں اپنے عمران خان صاحب کو، ان 3 سزاؤں میں ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ فیل ہو گئی ہے جو ان کے ٹارگیٹ تھے، کوئی ایک بھی اچیو نہیں کر سکی. اپنے لوگ ان کے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک کب اسٹیج آ گیا کہ جی لوگوں کو اب موقع ملے گا. لیکن اب اس کے آگے ذرا آپ سوچ لیجیے کہ اگر اس موقع کو بھی لوگوں کو انہوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ یوز نہیں کرنے دیا اور پراپرلی نہیں اس کو کاؤنٹ کیا اور دھاندلی کی اور گڑبڑ کی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ پھر تو لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہے گا کہ جی اگر آپ نے ڈنڈا اٹھایا تو پھر میں بھی ڈنڈا اٹھاؤں گا، آپ نے بندوق اٹھائی ہے تو میں بھی اٹھاؤں گا، آپ نے اور کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اگر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اور اتنی بڑی پارٹی اور اتنے ووٹرز کے لیے اور اتنے لیڈرز کے لیے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ तो फिर ये तो फिर एक आपने रास्ता पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक तबाही का रास्ता चुन लिया कि जी अब ये तबाही होगी और उस पे जाने के लिए। तो ये इनको कोई अकल दे, अल्लाह ताला दे, कोई शर्म दे, अकल दे, जो भी करामत साहब बैठे हैं यही डिप्लोमेटिक तरीके से साइबर भेज दे, कोई समझ जाओ अभी भी
साइफर साइफर भी बेआबरू हो गया साइफर। इस फस्ताई टोले ने तो इंतहा कर दी है शाहीन सहबाई साहब, इन्होंने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी पाकिस्तान को जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं दुनिया भर में।
मेरा कंसर्न अब क्या है आप दोनों के साथ, मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये अदले बदले की सियासत चलने लगी इस मुल्क में तो फिर तो कोई भी किसी की भी इज्जतें महफूज नहीं होंगी। आप जस्टिस सतर मिनल्ला साहब की बात कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में आए हैं, लोग आतिशफिशां बने हुए हैं उनके साथ जो हुआ, बाजवा साहब के साथ जो हुआ। और अगर अब जो ये आप एक पार्टी को बिल्कुल ब्लॉक करेंगे तो आइंदा भी यही सिलसिला चलता रहे तो मुल्क के साथ तो बहुत सख्त ज्यादती है ये
मुल्क के साथ। नहीं, मैं कह रहा था कि ये मुल्क के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है बीबी। मैं यही तो कहता हूं कि तुम जागीरदारी की जमीन में जमहूरियत का बीज परवान चढ़ाना चाहती हो, जो नामुमकिन है। पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान का मसला तहजीबी है, माशी मसाइल तो बाद में आते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तहजीबी है। इसलिए कि हमारे यहाँ जागीरदारी निज़ाम का राज है और जागीरदारी निज़ाम में मुखालफत को दुश्मनी समझा जाता है। मुखालिफ जमहूरियत का हुस्न यह है कि आप मुखालिफ को बर्दाश्त करते हैं, रवादारी जमहूरियत की असास है, लेकिन जागीरदारी में रवादारी नाम की कोई चीज़ नहीं।
आप क्या कहते हैं शाहीन से भाई साहब?
बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि हमारे मुल्क में एक तो जो सिस्टम हमें मिला था उसमें जमहूरियत तो थी नहीं, और उसके बाद जब जमहूरियत हम लेकर आए जबरदस्ती टूटी फूटी जो भी लाए तो वो लोगों के जो रवैये हैं, लोगों का माइंडसेट है, वो जमहूरी नहीं है। आप देख लीजिए, कोई सी पार्टी उठा के देख ले, कोई से खानदान उठा के देख ले, कहीं जमहूरियत का कोई अता पता है ही नहीं,
कोई निशान ही नहीं।
ये नहीं होती कि आप इलेक्शन लड़के और प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये जमहूरियत है। जमहूरियत तो ग्राउंड से शुरू होती है मैडम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे कैनेडा में, अमरीका में छोटे छोटे एजुकेशन बोर्ड के लिए लोग लड़ते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर जमहूरियत बनती है,
जीना बजीना चढ़ते हैं।
सर एक तारिक शाह हैं यहाँ पे, लॉयर हैं, उन्होंने उनका एक आर्टिकल था, मुझे बहुत प्यारा लगा था और मेरी वो याददाश्तों में मैंने उसको भी संभाल के रखा है। वो कहते हैं द स्टेट मस्ट अर्न द ट्रस्ट बाय बीइंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल लेजिटिमेट एंड बेनिफिशियल। मगर क्या पाकिस्तान में स्टेट का कोई तसव्वुर रहा?
स्टेट का तसव्वुर मैडम ये रहा कि स्टेट के पास डंडा है और स्टेट के पास पावर है, और स्टेट जो कहती है वो कहती है कि जी मैं बस जो कह रहे हूँ बिल्कुल यही है, ठीक है, और आप सब लोग लेट जाए। ये उनका तो तसव्वुर ये। अभी दो दिन पहले मैं एक साहब से बात कर रहा था, बड़े मशहूर भी मारूफ साहब है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। उन्होंने कहा हमारे इस दौर में दो चीजें बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो हमेशा से रही हैं और वो, और इस दफा हमने उनका भी नुकसान कर दिया, उनको भी लूज कर दिया। मैंने कहा जी क्या दो चीजें? उन्होंने कहा जी एक चीज ये थी कि जी फौज की अवाम में एक उनका जो रेपो था उनकी जी वो एक बहुत अच्छी थी, और फौज और अवाम हमेशा एक साथ रहते थे और साथ चलते थे। और दूसरी बात ये थी क्रेडिबिलिटी फौज की, कि जो फौज कहती थी लोग उसको वन वन मान लेते थे कि जी हाँ वहां फलानी जगह अटैक हुआ है, इतने मर गए, इतने हमने मार दिया, ये कर दिया, और ये सब उनके साथ सपोर्ट में आ जाते थे और नमाज जनाजे भी पढ़ते थे और दुआएं भी करते थे, लेकिन उन पर कोई चैलेंज नहीं करता था कि जी आप गलत करें या सही करें। अब कि उन्होंने कहा कि इस दफा ये हुआ है कि जी फौज की दोनों ये जो क्वालिटीज थी लोग उनके खिलाफ है और उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही, कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं, चाहे वो जो मर्जी आए थे। तो ये दोनों बड़े बहुत बड़े नुकसान है, और इसकी वजह से अगर कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तानी के ऊपर कोई अटैक हो गया या कोई बड़ी मुसीबत आ गई जिस फौज को लड़ना पड़ गया तो ये फौज फिर क्या करेगी, अपने लोगों से तो वो लड़ लड़ के अपनी ऐसी तैसी कर ली है उसने, सबकी ऐसी तैसी कर दी है, बाहर वाले कोई अगर आ गए तो वो तो फिर ये किसी काबिल भी नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा इन्होंने अपने लिए मोल लिया और इसको जितनी जल्दी हो सके मेरा ख्याल है ठीक करने की जरूरत है कि ये रिलेशनशिप जो है फौज का और अवाम का, इसके बगैर कोई मुल्क कोई फौज नहीं चल सकती।
इन्होंने आसिम मुनीर साहब ने और नदीम अंजुम साहब, नदीम अंजुम साहब, इन दोनों ने स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की और आज मुख्तलिफ जगहों पर मैं सर्वे देख रही थी कि यूथ हमारे साथ है, मतलब कितनी गलत बयानी करेंगे।
इंतहाई दर्जे की दरोह गोई है ये कहना कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल फौज के साथ है। अगर वो फौज के साथ होती तो इमरान खान के साथ शाना बशाना क्यों खड़ी होती। इमरान और फौज में तो अब खुली दुश्मनी है ना, अब हमारी तुम्हारी खुली दुश्मनी है, अब तो हमारी तुम्हारी खुली जंग है।
वतन के लिए मेरा ख्याल है कि हर इंसान को अपना आप घुमाना पड़ेगा। सर मैं
वतन के लिए किस 1971 में किसी ने वतन के लिए सोचा था? यही फौज की अनानियत थी, यही मुतलक लड़ानी थी जिसने आधा मुल्क गंवाया।
नहीं, आप उसमें जो भी कहेंगे, देखिए अमेरिका की इंटरवेंशन रही, हमेशा से इंटरवेंशन रही,
अमेरिका की बांग्लादेश हमेशा बांग्लादेश के मामले में कोई इंटरवेंशन नहीं थी। बिल्कुल गलत है ये कहना कि अमेरिका की इंटरवेंशन थी। जो कुछ किया हमने अपने आप किया, हमने बंगालियों को हकीर समझा, हमने बंगालियों के अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज किया, उन पर धौंस और ताकत के जरिए से अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की। अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया था।
पाकिस्तान बनने पे हिंदुस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान ज्यादा अरसा नहीं सरवाइव करेगा, ये वापस हिंदुस्तान में जम हो जाएगा, इज इट फैक्ट और रॉन्ग?
उन्होंने यही कहा था, लेकिन हमने पाकिस्तान को मजबूत बना के उनके इस नजरिए को, उनके इस तजिए को गलत रद साबित कर दिया था। वो तो जब उसके बाद फौज हुकूमत पर काबिज हुई, जब जमहूरियत का तख्ता उल्टा गया, अय्यूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया, वहां से बंगला मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो एतमाद की दीवार थी उसमें दरार पड़नी शुरू हुई। इस्लामाबाद कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ले जाना बंगालियों को बिल्कुल पसंद नहीं था।
ठीक ठीक, मगर मैं ये कहती हूँ कि पॉलिटिशियंस ने भी रोल अपना अपना प्ले किया था। देखिए उसमें मैं आप क्या कहते हैं शाहीन से भाई साहब, आप दोनों की मौजूदगी में मैं तो किसी जगह पर
नहीं। ये करावत साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये और आपकी बात भी सही है, पॉलिटिशियंस भी उस एक
बड़ा रोल प्ले किया था। सर बड़ा पॉलिटिशियंस
रोल प्ले किया था और भुट्टो साहब उस वक्त ऐसे मैं तो उनको बहुत करीब से देख रहा था क्योंकि उस वक्त मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी और वो पिशावर में हर दूसरे दिन आते थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो रिजल्ट थे सब में बैठा होता था।
उन्होंने नारा लगाया था इधर हम उधर तुम।
जी 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 बिल्कुल, मैं बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो वहां जाएगा उसकी हम टांगे तोड़ देंगे। मैंने खुद सुना।
लेकिन सहवाई साहब मैं ये सवाल करता हूँ कि भुट्टो किसका लाया हुआ था?
नहीं लाया हुआ था, मगर
पैदावार था ना।
दूसरे अभी तक जितने भी ये टेन्योर्स चलते रहे कि वो एक दूसरे, मैंने आज प्रोग्राम के शुरू में भाई साहब मैं यही बात करी थी कि बिलावल ने अपनी मां के मारने वालों को जो छोड़ दिया ना, ये बड़ी अजीब सी बात।
जी, 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 जी,
छोड़ दिया बल्कि उनके साथ इत्तेहाद किया, उनके साथ इत्तेहाद किया।
सर क्या नजर आता है कि इस वक्त जहांगीर तरीन के हल्के में जो खातून हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये मार धाड़ की सियासत अभी तक जारी है, इसके बारे में क्या कहें?
देखिए ये तो अब अल्टीमेट एंड तक पहुंच गए ना, ये तो अब खबर ही नहीं, अचानक खबर आती है तो कोई अचंभा नहीं होता था कि फलाने को अरेस्ट कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। वो
अब तो ये मामूल बन गया।
बच्चा जा रहा था टोपी पहन के पीटीआई की तो मोटरसाइकिल छीन ली, उसका कार्ड छीन लिया, ये सब खबरें तो रोज आ रही है। कोई किसी के गाड़ी छीन ली, कुछ कर दिया, यानी ये तो एक ऐसी अफरा तफरी और लापरवाही।
यहाँ पर मेरा बड़ा अजीब सा एक सवाल आया कि आप दोनों से ही मेरा सवाल है یہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ادارے یہ کچھ کر رہے ہیں مگر عام عوام بھی اتنے پولرائزڈ ہیں. جیسے ابھی میرا ایک بھائی ہے 0264, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ کمیونٹی چینل ہے اور آپ یہ بات کرتے ہیں, میں تو صرف ناانصافی کی بات کر رہی ہوں, اور جب کوئی ناانصافی تو ایوری بڈی میرے جیسا کمزور آدمی جو اوپریسڈ ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے.
بالکل
ٹھیک ہے, میری کمزوری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی تو میں آٹومیٹکلی جھکاؤ ہو جائے گا, بیکاز اللہ نے مجھے صلاحیت اتنی ضرور دی ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کو میں دیکھ سکوں. تو لوگ بھی ڈیوائڈیڈ ہو گئے, یہ کیا ہوا؟
میں اس پہ پہلے کہوں, پھر اس پہ کرامت صاحب سے ضرور آپ اوپینین لیجیے گا. میرے خیال میں لوگ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ ان کو ایک راستہ عمران خان صاحب نے دکھایا ہے, اور شاید وہ صحیح بھی تھا کہ جی آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے کوئی جذبات میں آ کے اٹیک نہیں کرنا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, مگر جب تاریخ آپ کو موقع دے گی 8 تاریخ کو جب الیکشن ہوگا اس میں آپ نے جا کے پوری طرح سے اپنا بدلہ لینا ہے. ایک تو یہ میسج انہوں نے بڑے زور سے دیا تھا اور اس پہ انہوں نے خود بھی فالو کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کو کوئی کال نہیں دی کہ جی آپ نکلیں لڑیں مریں, سب کچھ یہ انہوں نے میرا خیال ہے جان بوجھ لیتی ہے اور اچھا کیا. اور اب اگر یہ 8 تاریخ کو نکلا ہے, میں تو اکثر یہ اپنی ٹویٹ میں بھی اور لکھتا بھی رہا ہوں کہ 8 تاریخ کا دن یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس کو کہتا ہوں گینگ آف فور, جنرل ہیں اور ایک جج صاحب, ان کا جو گینگ بیٹھا ہے ان کے لیے یہ 8 تاریخ کا دن موت کا اور زندگی کا دن ہے. اگر لوگ نکل آئے اور انہوں نے آ کے ووٹ دے دیے اور اتنی تعداد میں لوگ نکل آئے کہ یہ اس کو قابو نہ کر سکے, تو ان 3-4 کا تو آخری دن ہے یہ, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی رٹ جسے کہتے ہیں نا فوج کے اندر, ملک کے اندر, باہر سب جگہ ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بھائی آپ نے اتنا مار مار کے لوگوں کا کچوبر نکال دیا, یہاں تک لیا ہے اور اس کے باوجود آپ ہار گئے, اب آپ اللہ کا واسطہ جائے انف از انف والی سچویشن آ جائے گی.
رحمت صاحب بالکل شاہین صاحبائی صاحب آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے, عوام میں بے حسی نہیں ہے, عوام بلکہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کے لیڈر نے, ان کا جو پسندیدہ قائد ہے اس نے ان سے پرسکون رہنے کی اپیل کی اور انہوں نے اس اپیل پر لبیک کہا. اب وہ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا. 8 فروری ان کے لیے یوم جہاد ہوگا اور جہاد وہ کریں گے اپنے ووٹ کے استعمال کے ذریعے.
تو میک لانگ سٹوری شارٹ, ووٹ ڈالنے کے لیے ہر انسان نکلے اور ووٹ ضرور ڈالیے گا اور ہر بندے کو ووٹ کے لیے نکلنا.
اس میں بھی حربے آزمائے جائیں گے, لوگوں
کو بہت زیادہ حربے, بہت زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں, لیکن ایک تعداد اگر نکل آئی تو پھر وہ آگے بس کرتے ہیں. پھر
اگر ہجوم نکلے, اگر عوام کا سیلاب امڈ آیا تو پھر کچھ نہیں کر سکے.
سر میرا آخری سوال آپ سے ہے, جنرل اعجاز عوان صاحب ہیں, ان کی ایک ویڈیو اس وقت ہے جنہوں نے بڑا ڈپریسڈ میں کہ یہ پورا کا پورا پلیٹ فارم جنرل باجوا سیٹل کر کے گئے تھے, جس میں جنرل آصف منیر آل دو ہی گاٹ ریٹائرڈ بٹ ہی کیم بیک ان 48 آورز, اور جنرل ندیم انجم یعنی ابھی پرانے, عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے جناب باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی, جنرل ندیم انجم آلریڈی ایکسٹینشن میں چل رہے ہیں, اور جو جنرل اعجاز عوان ہیں ان کی وہ ویڈیو بھی ہے کہ باجوا, اور بڑی بیڈ ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں باجوا صاحب کے بارے میں, آپ کو سننے کا موقع ملا؟
جی جی بالکل ملا تھا, اور میں اس سے اگری کرتا ہوں. مجھے کسی اور نے بھی یہ بتایا تھا, ایک صاحب جو جس دن یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی آصف منیر صاحب کی, تو پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف اور ان کے کچھ لوگ بیٹھے تھے, ان میں ایک صاحب بیٹھے تھے, ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں باجوا صاحب نے 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ یہ جو 5 نام آپ کو دیے بھیجے گئے ہیں ڈیفینس منسٹری سے, اس میں آصف منیر کا نام نہیں تھا, ان میں سے آپ ساحر شمشاد, جنرل ساحر شمشاد کو آپ بنا دیں, 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ نوٹیفیکیشن کر دیں ورنہ میں مارشل لا لگا دوں گا, یہاں تک وہ گئے تھے.
رائٹ.
اور یہ سب انتظار کر رہے تھے کہ جی یہ نواز شریف سے پوچھا گیا لندن میں کہ جی کیا کریں, انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ساحر شمشاد کو بنا دیں وہ ہمارے خلاف ہوں گے, اگر وہ نہیں ہم بناتے تو یہ مارشل لا لگا دیں گے یہ بھی ہمارے خلاف ہوں گے, تو ہمارے لیے تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے, تو ہم کچھ نہیں کرتے, چلو لگانے دو ان کو. वो इत्तेफाक है कि वो एक घंटा गुजर गया और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी जनरल बाजवा साहब की कि वो अपने जो धमकी पे अमल कर सकते, वो उन्होंने आसिफ मुनीर साहब को बना दिया। तो ये तो इनकी वो साहिर शमशाद साहब को लाना चाहते थे आसिफ मुनीर के खिलाफ, तो जनरल बाजवा खुद थे, मगर इनका जो इंस्टीट्यूशनल जो एक आप कह लें यूनिटी होती है या प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन या अपने आप को और आपस में एक दूसरे को बचाओ और एक्सपोज न करो और सब आपस में मिल मिला के खाओ, वही चल रहा है। और नवाज शरीफ को इतनी बड़ी फेवर जब नवाज शरीफ ने दी उनको, तो अब देख रहे हैं आप वो किस तरीके से वो एक एक लम्हे एक एक स्टेप पे उनकी फेवर वापस कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया,
आगे बढ़ के जी।
बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग जो हैं, इन्होंने रोल प्ले किया था इन बिटवीन, और मोहसिन बेग नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब। मोहसिन बेग ने जब इनका अनाउंस होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तो उन्होंने पहली अपनी तस्वीर आउट की थी, याद है, जो गोल्डन पिक्चर थी। और दिस इज वेरी सैड। आखिरी सवाल, आप दोनों इसका जवाब देते चलिए जाइएगा। मेरा सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो एक बयान दिया है कि दाल में कुछ काला है, और कि वो शख्स जिसकी 8 महीने के बाद जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसने रिटायरमेंट कर ली, अभी तो और भी रेजिग्नेशंस हैं, तो इसका क्या मकसद है?
वो सुप्रीम कोर्ट शराफा से पाक हो रहा है, शराफा की सफाई की जा रही है, तो ये मुकम्मल फस्ताइयत है पाकिस्तान में ऐसी।
मगर मियां साहब ने तो इस पे कलक का इजहार, गम का इजहार किया है कि मतलब क्या हो रहा है, दाल में काला, कौन सी दाल में काला है?
नहीं, उनकी अपनी दाल असल में पक नहीं पा रही।
नहीं नहीं, मगर दाल कौन सी काली है कि जो चीफ जस्टिस जिसने 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना था उसने भी रिजाइन कर दिया, तो उनका इशारा कौन सी दाल की तरफ है?
अब ये उनसे पूछा जाए कि किस
भाई साहब बताते हैं कौन सी दाल है?
उनका मतलब ये है कि जी जो कुछ उनके खिलाफ नवाज शरीफ के खिलाफ जिन लोगों ने 2-3 साल पहले जब उनको निकाला था और मुझे क्यों निकाला वाली जो कहानी आई थी और वो जो इकामा और वो उसकी वजह से उनको निकाला गया, वो कहते हैं कि वो जो खिचड़ी पकाई थी जिन जिन लोगों ने वो अब वो भुगत रहे हैं, अब निकाले जा रहे हैं, और ये है दाल। मगर मुझे हैरत ये होती है कि ये इतनी बड़ी मुहिम चलाने आए, वजीर आजम बनने आए, लेकिन मैंने एक लफ्ज नहीं सुना उन्होंने सिवाय माजी में मुझे यूं क्यों किया, मुझे यूं निकाला, उसने फलाने ने किया, वो भुगत रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसके अलावा कोई उनके पास बयान करने के लिए लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं है।
किसी ने भी कोई मंशूर नहीं दिया, किसी ने भी सिर्फ कोई मंशूर नहीं दिया, $300 गैस कम कर देंगे सिवाय इसके 300 यूनिट
बिजली के मुफ्त दे देंगे,
कोई इकोनॉमी की बात नहीं थी,
सब दिखाने वाली बात है किसी।
और बिलावल भुट्टो ने तो बल्कि कह दिया, उन्होंने कहा कि कहने में क्या फर्क है, ख्वाब देखना
कहने में क्या,
कहने में क्या जाता है। और मियां नवाज शरीफ की असल में तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, तो उन्हें मुहावरों का इस्तेमाल भी नहीं आता।
बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों की मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार हूं। थोड़ा कोई अच्छा एक लिहाज से हो गया
अच्छा
कि आप दोनों मौजूद थे।
शाहीन शहवाई साहब की फहम व फिरासत से मुझे मुस्तफीद होने का मौका मिल गया,
बहुत
अच्छी बात। क्या हो,
बहुत बहुत शुक्रिया सर,
बहुत शुक्रिया सर। और जिंदगी और मौत इसी का नाम है, प्रिंस चार्ल्स, आप देखिएगा, डायग्नोज्ड विद 1 कैंसर, दैट वाज प्रोस्टेट, मगर अभी उसकी कीमो चल रही थी, डायग्नोज्ड विद अनदर कैंसर, नाउ ही इज टेकिंग ऑफ। उनकी ड्यूटीज जो हैं, उनकी वाइफ कमला, उनकी बहन एन और उनका बेटा विलियम जो है, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, बट आई थिंक सो दिस देयर इज समथिंग सीरियस। एनीवेज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ।
यहाँ दाल में कुछ काला है,
बस देखिए जिंदगी से ये कुरान भी इन्हीं वाक्यात से भरा हुआ है, हमें भी हैव टू लर्न।
इंसान कायल हो जाता है,
वी हैव टू लर्न।
वो जो अपने आप को जमीन पर खुदा का अवतार समझते हैं, यहीं आके मजबूर हो जाते हैं।
बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, आपका थोड़ा सा हमारा सेवाई साहब, आपसे इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। आप पता ही होगा हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी,
नहीं कोई मसला नहीं, मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
लव यू, बहुत शुक्रिया।
अब पाकिस्तान में तो 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद होने वाला है।
हाँ, उस कौम को पसमानदगी में रखना है,
उसी के पर्दे में धांधलियां होंगी।
बहुत शुक्रिया, अभी दीजिए इजाजत और चंद एक स्पॉन्सर्स विल कम बैक विद द न्यूज। जी कथा हो जाए कुछ।
हाँ कथा हो जाए, कथा अभी آج میں اپنے ابھی 2 گھنٹے پہلے اپنے ایک دانت کی قربانی دے کے آیا ہوں تو وہاں ڈینٹسٹ نے مجھے اپنے بستر پہ لٹایا ہوا تھا تو وہیں یہ 4 بسترے ہو گئے. میں نے اس سے کہا لڑکی سے کہ میری وہ جیکٹ کی جیب سے میرا فون تو نکال کے دو میں اس پہ لکھ لوں. تو عرض کیا ہے کہ ملت فروش جتنے ہیں سب دودھ کے دھلے, ملت فروش جتنے ہیں سب دودھ کے دھلے, جو ہیں محب قوم وہی سب خراب ہیں, جو ہیں محب قوم وہی سب خراب ہیں. ڈنڈا ہے جس کے ہاتھ میں فرعون وقت ہیں, ڈنڈا ہے جن کے ہاتھ میں فرعون وقت ہیں. بے ہم یہ ملک و قوم کے حق میں عذاب ہیں.
بہت شکریہ, بہت
بے ہم یہ ملک و قوم کے حق میں عذاب ہیں.
ہوتیوں کے اوپر یمن میں اٹیک ہوا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے مل کے 38 اٹیکس کیے ہیں. دس از اونلی یمن جو ریٹیلیٹ کر رہا ہے جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے. اور اب آپ بتائیے گا کہ مگر ایک ملک ہے امریکہ نیور تھاٹ کہ رشیا کے بعد کوئی اس کے اپنے قریبی سمندر میں بھی آ کے مشق کر سکتا ہے, دیٹ از چائنا.
یمنیوں کے متعلق رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اسلام پر مشکل وقت کب آئے گا, تو رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں ہوگی. یمن میں البتہ حریت کا پرچم لہرائے.
بہت شکریہ. اور جس جس نے جانا ہے سعودی عربیہ ہوا ہے کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ریزورٹ ناؤ ویری سون,
بلنکن پہنچا ہوا ہے وہاں پہ سعودیوں کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات سفارتی تعلقات استوار کر لیں.
بہت شکریہ, ابھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ, شازیہ جی اور ماجی جمال ول کور نیوز اراؤنڈ دا ورلڈ.
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام, محمد صدیق, آل دا سولوشن, پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا.
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%. محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں, پرسکون زندگی, اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن. اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے, قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں. ری فائنینسنگ آپشنز, رینیول آپشنز, مارگیج ڈیفیکلٹیز, ڈاؤن پیمنٹ ایشوز, سیلف امپلائڈ, پرائیویٹ فنڈز, سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے. نمبر ٹو کال 6479235659, 6479235659. لائسنس نمبر 10530.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس, ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس, گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
اسٹیشن سائٹ کی سیل شروع ہو گئی ہے ملٹن ڈاؤن ٹاؤن میں آپ کی منفرد خوبصورت رہائش کا, جو شرطیا بہترین قیمت 4,90,490 سے شروع ہو رہی ہے. 2 ٹاورز پر مشتمل اسٹیشن سائٹ کی عمارت سینٹرل پوڈیم کے ذریعے ان ڈور اور آؤٹ ڈور سہولتیں پیش کرتی ہے. ملٹن گو اسٹیشن سے منسلک اسٹیشن سائٹ ملٹن فیوچر موبیلٹی ہب کا سنگ بنیاد ہے, جو آپ کو بنا کسی رکاوٹ آپ کی منزلوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا. جی ٹی اے کے پھلتے پھولتے سنہری مستقبل میں اپنی انویسٹمنٹ کو ان لاک کیجیے اور آج ہی اسٹیشن سائٹ .ca پر رجسٹر کیجیے.
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला।
ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशन ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दी ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, गाड़ी से सब दोस्तों एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
और बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साथ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। इसकी मेलविक ड्राइव विटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
जी सब नजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:36:26 हमारी घड़ी में हो चुके हैं। एक गीत की तरफ ले चलता हूं मैं, इसके फौरी बाद अंजुम कुरैशी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और पहले ये गीत सजाद अली की आवाज में समाप्त फरमाइए।
मैंने एक किताब लिखी है, मैंने एक किताब लिखी है, मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब से पहले सफे पर तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। ओ दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़। दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें ही लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है है। मैंने जो आवाज सुनी है, मैंने जो आवाज सुनी है, उस आवाज के पहले सुनूं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। Thank you. सफा क्या लिखो कहकशाएं खुलने लगी सदियों पुराने सभी राज खुल गए तीसरा सफा क्या लिखा कहकशाएं खुलने लगी सदियों पुराने सभी राज खुल गए।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
वेलकम बैक अगेन एंड 4:40 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। स्टिल +2 डिग्रीज टेम्परेचर हमारे मोहल्ले में और शारदा जी को तो मैंने भी उनका छद्दा दिया ही नहीं है और हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। परवाह नहीं, एक एक करके हम छद्दा देते रहेंगे उनको, वो साथ साथ पढ़ती रहेंगी। ये डीजे साहब, आपका छद्दा ये हो गया, मेरा छद्दा यहां पर है। दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनाब, आपका अल्लाह भला करे, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। सुल्तान भाई यहां पर होते हैं, 801 बोवेड ड्राइव, बोवेड एंड चिंकूजी के कॉर्नर पर आपको मिलेंगे। 801 बोवेड, आमिर खान थैंक यू सो मच, आपने आज मेरे लिए हेल्प कर दी। 9054502828। अगर आपने टीवी या अप्लायंसेज चाहिए हो किसी भी किस्म के तो आप सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज में पहुंचिए। 9054502828 इनका फोन नंबर है। हमारी आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर पद्मा झा, 3410 शेपर्ड एवेन्यू, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर। अगर आपके आपके घर में किसी के भी दांतों में कोई खराबी है तो डॉक्टर पद्मा झा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, 4162997466। ये ईस्ट एंड में रहने वालों के लिए। अगर आप वेस्ट एंड में हैं तो डेंटिस्ट्री और मिसेस सागर, डॉक्टर नाजिया रहमान, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, और एक और इनकी दोनों लोकेशन जो है ब्रैम्पटन के इलाके में है, 9058721100। डॉक्टर नाजिया रहमान, हमारी और आपकी डेंटिस्ट। जी अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम मजद भाई।
नहीं नहीं,
खैरियत है, ठीक है।
पहले जो है मैं म्यूजिक मैंने पहले बचा दिया है तो घोड़ा तैयार है, तो अब सलामी अर्ज करना चाहिए पहले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? आप देख रही थी हाँ।
और मैंने कहा चलो मैं ही आज कर लूँ जो है, आज चक्कर क्या है?
आज चक्कर ये था कि मामला जरा उल्टा हो गया, मामला अच्छा। उल्टा हो गया। उल्टा मामला भी कैसा हो गया
हाँ।
कि हम यहाँ म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिक हाँ। से पहले हम लोगों को खुदाफिज कहते हैं
हाँ।
और बताते हैं कि जनाब 6478724900 पे आप अभी हाँ। से डाल दें अपने नंबर और उसमें हम आप हमें पूरी की पूरी न्यूज सुन सकेंगे
हाँ।
मगर फिर मैंने सोचा
मैंने फिर गलत अंग्रेजी बोली आपने, न्यूज नहीं होता, न्यूजें होता है,
न्यूजें
हाँ,
न्यूज जो है हाँ, फिर हमने कहा कि न्यूज हाँ, तो चलती रहेंगी हाँ, 5:45 तक हमारा और आपका साथ रहेगा, तो सब इसलिए आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। एनीवे समझ आ गया ना
हाँ,
नहीं समझ आया तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है समझाने का हाँ,
अच्छा कुछ लोगों ने मजद भाई आप जो है ना देखिए आप कितना बेतहाशा बोल रहे हैं, मुझे कुछ लोगों ने वीकेंड के ऊपर मैसेज भेजे आप मजद भाई आपके साथ आजकल खामोश क्यों बैठे होते हैं, वो देखो पहन तो इन सुनाई दे रही, मेरी आ नहीं सुनाई दे रही देख लो मैं तो बोलती ही नहीं हूं भाई,
निकले तो सुनाई दे ना वहां से तो
मैं तो बोलती ही नहीं
हाँ। मुझे लोगों ने कहा कि यार ये शारदा जी कितनी खामोश
हाँ। बिल्कुल
तो बात ही नहीं करती
एग्जैक्टली देखो भाई साहब कितने अच्छे लोग हैं जो आपको मैसेज भेज रहे हैं, मुझे कितने गंदे लोग मैसेज भेज रहे हैं, मुझे कह रहे हैं आपके साथ आजकल मजे से क्यों खामोश बैठते हैं,
बिटवीन यू एंड आई किसी ने कॉल नहीं किया
तो मैंने उनसे कहा नादानों मजद भाई तो मुझे बोलने ही नहीं देते हैं, मजद भाई सब वक्त बोलते रहते हैं, मजद भाई
देखे
اچھا جی اچھا چلو جی چلو ٹھیک ہے تسی زیادہ بولو ساری خیر ہے
ہاں جی تسی بولو ہی نہیں
اچھا جی میں نے آج بالکل خاموشی سے دینی ہے جی
پڑھ لینا ہمارے ٹی وی دیکھنے والے آپ ساری نیوز
بالکل ہم نے آج ایسے کرنا ہے آج ہم نے ایسے کرنا ہے عامر دکھاؤ بھائی آج لوگ خود پڑھیں گے
ہاں خود ہی پڑھ لو
خاموش بیٹھوں گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا بس میں صرف اسپانسر بتا دوں اس کے بعد میں نے پیپر سامنے رکھ دینا آپ خود پڑھیں میں سارا وقت خاموش رہوں گی
وہی طریقہ یوز کریں گے ہم آج ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کہا کیا کہا خود ہی پڑھ لیں
خود سمجھو بالکل ٹھیک ہے جی یہی کریں گے ہم اچھا جی تو اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ شادیوں کے شوقین ہیں کیونکہ ویسے بھی شادی کا موسم شروع ہو گیا نا رمضان شروع ہونے والا ہے ہاں
اچھا
اس سے پہلے شادیاں بہت ساری ہو گئی ہیں تو اگر آپ بھی شادیوں کے شوقین ہیں ایک دو تین چار اور بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جی تو آپ پلیز یہ پروگرام دیکھیں سی بی سی جیم کا ہے بالی ویڈ زبردست پروگرام ہے آپ کو بتاتا ہے لیٹسٹ فیشنز کیا چل رہے ہیں بالی ووڈ میں تو آپ کو اپنے پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے گریڈ ڈے میں کیا اچھے کپڑے میک اپس کیا لکس ہونی چاہیے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ ضرور پروگرام دیکھیں اور جناب ٹیپ ٹیپ سینڈ یہ ڈائریکٹ منی آپ بھیج سکتے ہیں 30 ڈفرنٹ بینکس جو ہیں پاکستان میں اس کے لیے کیش پک اپ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی یو بی ایل کے جو برانچز ہیں پاکستان کے اندر زیرو ٹرانسفر فی ہے اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کریں ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپ اینڈرائڈ اور ایپل کے اوپر یا کہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ٹیپ ٹیپ سینڈ ڈاٹ قوم کو اس کے علاوہ جناب ہمارے دلوں کے راجہ دے بادشاہ جی کہتے ہیں کہ میں آپ کے بہت سارے پیسے بچاؤں گا اس مہنگائی کے زمانے میں آپ کو رائٹ کوریج لے کے دیں گے تو پلیز آپ ان سے سمپرک کریں آل اسٹیٹ کے اندر یہ ہوتے ہیں ان کا نمبر ہے 6472903773 یہ ہے جی نمبر اچھا جی اچھا جو ہمارے جو کینیڈا کے ٹائٹنز ہیں نا دنیا میں تو بہت بڑے بڑے ٹائٹنز ہیں ان ٹائٹنز کی بھی ہم آپ کو خرویں سنائیں گے لیکن جو ہمارے جو اپنے ملک کے لوکل ٹائٹنز ہیں ٹروڈو صاحب اینڈ پی ایف پالیور صاحب ہیں جی ان کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے امپریس ہو گئے
پیاری لڑائی
ہاں پی ایم ایل این اور بی بی بوسرداری سے امپریس ہو کے یہ دونوں بھی لڑ پڑے ہیں اچھا جی ہوا کیا ہے ہویا یہ جناب کہ ٹروڈو صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ پی ایف پالیور صاحب جو ہیں وہ اور ان کی کنزرویٹو پارٹی ایکسپلینیشن ایک او کرتی ہے کینیڈینز کو کیونکہ ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے جو چیف ایڈوائزر کی جو فرم ہے وہ آج کل لابنگ کر رہی ہے لاب لاس کے ساتھ ہے جی اچھا ٹروڈو صاحب جو تھے وہ واٹرلو کے اندر ایک ہاؤسنگ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی گروسری پرائسز بہت ساری اوپر چلی گئی ہیں اور آپ کے جو منسٹر تھے جو ہیں وہ فلپ شیمپین صاحب وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے گروسری چینز کے ساتھ تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں پہ اس موقع پہ کہا جی کہ یہ جو ان کے ٹاپ ایڈوائزر ہیں جینی برین وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے اور پالیور کے جو لیکن ڈائریکٹر آف میڈیا ریلیشنز ہیں ان تک جب یہ بات پہنچی ان کا نام ہے سباسٹین سکیمز کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انہوں نے کامنٹس دیے ہیں لبرل پارٹی نے یہ لیفیبل ہیں اینڈ پتھیٹک ہیں اس لیے کہ جو ٹروڈو صاحب ہیں وہ اور ان کے منسٹرز کانسٹنٹلی یہ پرومس کر رہے تھے کہ ہم جو ہے بائی تھینکس گیونگ گروسری کی پرائسز جو ہیں وہ سٹیبلائز کر لیں گے اور چونکہ اب یہ فیل کر گئے ہیں یہ پرائسز جو ہیں کانسٹنٹلی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس لیے جو ہیں اب یہ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں اس سے پہلے ہاؤسنگ منسٹر شان فریزر صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس وقت ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ بھئی یہ بہت قیمتیں اوپر جا رہی ہیں گروسریز کی تو انہوں نے اصل میں یہ بات شروع کی تھی انہوں نے کہا جی کہ اگر کنزرویٹو پارٹی کو اتنی تکلیف ہے خاص طور پہ انہوں نے پی ایف پالیور صاحب کا کہا کہ اگر ان کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ پرائسز اوپر چل رہی ہیں تو ان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے وہ ایک فون کال ویئر ہوئے فون اپنا اٹھا لیں اور مجھے فون کر لیں لیکن آئی ایم شیور کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا جو چیف ایڈوائزر ہے وہ ان کی جو فرم ہے لابنگ کر رہی ہے لاب لاس کے لیے آنٹیریو میں اس سے پھر یہ ساری چیز جو ہے آج ٹریگر کی جس وقت واٹرلو میں پہنچے ٹروڈو صاحب تو پھر جو ہے رپورٹرز نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ ساری بات کی تو اب
اس کا جواب آئے گا
ہاں جواب آئیں گے تو اب جو ہے اور سیاپے پڑیں گے ویسے تو اسکیمسی
حالانکہ الیکشن تو بہت دور ہے
ہاں حالانکہ اسکیمسی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بہت ہی لافیبل ہے لیکن اب کتنا لافیبل ہے یہ پتہ چلے گا آج جناب پی ایف پالیور صاحب جو ہیں وہ برامپٹن کے اندر تھے اور آج انہوں نے بڑے ہی جو ہیں عظیم قسم کے कुछ जो है दिए हैं अपने किसी जो कार चोरी करते हैं उनको क्या पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं, अपने अपनी टिप्पणी दी है यानी केस के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि ये क्राइसिस बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है और लिबरल्स तो खुद कह रहे हैं कि 300% जीटीए के अंदर सिंस 2015 जो है ये क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। उसकी जो मेन वजह जो है पियर कॉलिवर साहब ने कहा जी कि 2019 के अंदर जो ये चेंजेस लेकर आए थे बिल C-75 में जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम जी बेल प्रोसीजर्स को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। अब क्या होता है कि कोई आदमी जो है वो गाड़ी चोरी करता है और विद इन आवर्स जो है उसको बेल मिल जाती है। तो ये जो ट्रूडो साहब ने काम शुरू किया है ना कैच एंड रिलीज पॉलिसीज, ये बहुत ही डेंजरस है और ये क्राइम इसलिए बढ़ता चला जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज में उसमें केओस हो रहा है। उन्होंने जी चार पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि 12,000 ये जो गाड़ियां अभी तक टोरंटो के अंदर 2023 में चोरी हो चुकी हैं और भी जगहों पर, ब्रैम्पटन का तो खैर वो बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं जी लोग जाते हैं वहां पर और लोग पॉइंट आउट करते हैं, पुलिस को बताते हैं कि भाई ये मेरी गाड़ी है इधर ये खड़ी हुई है इधर से उठाओ, तो उनको बेचारों को बल्कि उल्टा चार्ज किया जाता है कि भाई तुमने ट्रेसपास क्यों किया, तुम उस दूसरे बंदे के प्रॉपर्टी में एंटर क्यों है। बहुत मजाक उड़ाया इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी। तो इन्होंने जो चार ये जो अपनी दी हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं फौरन ये इन्फोर्स करूंगा वो है। उन्होंने कहा जी कि ये जो
प्रेजेंट जी वैसे आपको याद है मैंने और आपने पिछले कई दिनों से जब भी हम ये रिपोर्टिंग करते हैं कितनी गाड़ियां पकड़ी गई कितने वो, तो हमने हमेशा यही एग्जैक्टली सेम ये चार पॉइंट्स उठाए। आई एम वेरी ग्लैड दैट कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने सुना ये और उन तक बात पहुंचाई और वो पूरे के पूरे फोटो कॉपी चार
कट पेस्ट किया
ये।
उन्होंने कहा कि हम प्रिजन टर्म बढ़ा देंगे 6 महीने से 3 साल और जो ये रिमूव कर देंगे कि ये जो हाउस अरेस्ट कर देते हैं, ये हाउस अरेस्ट अगर कन्विक्ट कोई होएगा इसकी एलिजिबिलिटी भी हम खत्म करेंगे और अगर कोई आदमी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए गाड़ी चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो इसको एग्रेवेटेड फैक्टर समझा जाएगा कार थेफ्ट के अंदर और ये जो आपका बिल C-75 है इसको हम जो है उसके लिए ऑफेंडर्स को जेल में रखेंगे और हम ये खत्म कर देंगे ये प्रोविजन कि उनको बेल मिल जाए और वो वापस आ
क्विक बेल जो है।
हाँ क्विक बेल जो है वो
2018 में हमारे ट्रूडो साहब ने मॉडिफाई किया था C-75 को
2019 में। जी जी ये बिल में चेंजेस लेकर आए थे तो वो कहते हैं जी ये जो चेंजेस हैं ये अब नहीं होएंगी, हम इसको खत्म कर दूंगा मैं जैसे ही आऊंगा। तो ये आज उन्होंने कहा और हमने भी ये बड़ी दफा कहा जी कि इनको ज्यादा सजाएं देने की जरूरत है और ये जो आपके जो गाड़ियां हैं अलबत्त ऑटो मेकर जो हैं उनके अंदर अब वो आने लगे हैं जो है ना गैजेट्स माजा था जिससे कि आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि वो किधर जा रही है ना, वो GPS टाइप का कुछ एक वो उसके अंदर होता है। उसी सिलसिले का ये कुछ दिन पहले मजाक उड़ा रहे थे कि ब्रैम्पटन में जो बेचारे लोग हैं वो अपनी गाड़ी ट्रैक भी कर लेते हैं और वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं, पुलिस को बताते भी हैं तो उल्टा पुलिस उनको फाइन करती है जबकि उनकी आंखों के सामने जो है वो ट्रॉलर में उनकी गाड़ियां जो है उनके सामने जा रही है, हाँ उनको गुड बाय कर रही है
बल्कि दूसरी की दे रही
है। बिल्कुल बयान ऐ करो। तो ये आज जनाब ये इन्होंने कहा है। अच्छा जनाब लिबरल एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो हैं रैंडी बॉयसनॉल्ट वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। आपको याद है लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि जो अल्बर्टा की प्रीमियर हैं डेनियल स्मिथ, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं छोटे 15 ईयर्स और यंगर जिन जो कि चाहते हैं कि जी हम अपनी जो हार्मोन थेरेपी ले ताकि अपनी सेक्स चेंज करा सकें या प्यूबर्टी जो ब्लॉकर्स लेते हैं तो उसके अंदर उनके पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए और उनको किस नाम से पुकारना चाहिए वो उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उसके ऊपर आज इन्होंने बहुत ज्यादा एतराज उठाया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी की ये पॉलिसी है इसको मैं चैलेंज करता हूं क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है बॉयसनॉल्ट साहब ये खुद भी ओपनली गे हैं और ही इज द ओनली लिबरल पार्टी मेंबर जो कि अल्बर्टा से हैं। तो वो कहते हैं जी मैंने इनको कहा है कि आप मेरे साथ आके यानी मजाकरात करें, है जी आए मेरे साथ बैठे मजाकरात करें और ये मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल दिस शुड नॉट गो ऑन फ्लोर्स यानी कि ये पार्लियामेंट में पहुंचना ही नहीं चाहिए अप्रूवल के लिए, ये इतना खराब इन्होंने वो कहते हैं जी बड़ा ड्रेकोनियन आपका ये पॉलिसीज हैं जो आप लेकर आए हैं। तो जो अल्बर्टा की प्रीमियर है उनके ऑफिस ने कहा जी कि हाँ हम बॉयसनॉल्ट साहब के साथ जो है
बेनिफिट टू मेनी पीपल
तो वो कह रही हैं कि जी मैं अब जो है इनके साथ हम बैठने को तैयार हैं, हाँ तो हम प्रेपरेशंस कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए। लेकिन मजे भाई बात तो ठीक ही है कि 15 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या पता होता है कि
लफ्जों के लिए सही है on paper it is very nice, magar practically it's not going to help too many people.
So bilkul parents ko pata hona chahiye jo itna chota ho, kyunki bachon ko kya pata unka acha bura kya hai. Bharal ji inhone bada jo unke upar itraz kiya, unhone kaha ki ye jo unki transgender policy hai for youth ye bilkul sahi nahi hai. Anyways, Toronto ki jo transit users hain ji, unhone ab kaha hai ki Toronto government, sorry Ontario ki government ne ki hum ye jo transit system hai isko change kar rahe hain aur isme kafi jo transit users hain apne paise बचाएंगे. इन्होंने इसका नाम दिया वन फेयर. वन फेयर पॉलिसी जो है वो काफी अरसे पहले जो प्रीमियर फोर्ड थी उन्होंने अनाउंस की थी जब पहली दफा अपने इलेक्शन ट्रेल पे थे, लेकिन बहुत डिले होता चला गया. अब वो कह रहे हैं कि फरवरी 26 से दिस विल गो ऑन फ्लोर्स, और वो कह रहे हैं कि आपको जो राइडर्स यूज कर रहे हैं गो ट्रांजिट या टीटीसी या ब्रैम्पटन ट्रांजिट या डरहम रीजनल ट्रांजिट या मायवे या यॉर्क रीजनल ट्रांजिट, तो उनको एक ही दफा पैसे देने पड़ेंगे. आप एक स्टेशन से अगर बैठेंगे और वहां से आपने होके जो है गो ट्रेन में आना है, फिर गो ट्रेन से आपने सबवे जाना है, सबवे से फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप लेके टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जिसको के पहले राइटसन भी कहते थे उस तक आपने पहुंचना है, तो इस सब के लिए एक ही आप फेयर देंगे. अच्छा, इसमें लेकिन एक कैच है. कैच ये है कि वो जो फेयर जो है उसको बढ़ाया जा रहा है. जो इनिशियल फेयर है ना जहां से कि आप शुरू कर रहे हैं, दैट फेयर दे आर इंक्रीजिंग. लेकिन वो कहते हैं जी कि कन्वीनियंस रहेगी कि बार बार आप जो जाके टैप करते थे अपना,
उसमें ये है कि आप हाईएस्ट जो फेयर होगा ना,
हाँ हाईएस्ट सिंगल फेयर वो आपको चार्ज किया जाएगा,
उसको चार्ज किया जाएगा. प्राइसेस बढ़ाएंगे नहीं ये, वो उसमें उन्होंने क्या करना क्या है, जैसे कि अब गो ट्रेन का समझा है तो आप गो ट्रेन का दे दें और फिर टीटीसी से लेके वहां से लेके जो भी है माईवे पे आप जहां से जा रहे हैं आप वहां से आपको सिर्फ एक
ये कहने का मतलब ये है मजे से कि जैसे फॉर एग्जांपल वही है कि बैरी से अगर आपने आई मीन जस्ट एन ऑड एग्जांपल कि आपने एक रुपया देना था, फिर उसके बाद आपने डेढ़ देना था, फिर दो देना था, फिर आपने अठन्नी देनी थी, फिर आपने पहुंचना था, तो वो जो दो डॉलर वाला है ना वो आपसे चार्ज कर लेंगे. वो कर लेंगे.
देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ सेविंग्स
क्योंकि वो जो बाकी का रुपया डेढ़ रुपया अटनी वो सब आपके बच जाएंगे ना, वो आपके बच जाएंगे. तो इसलिए एक हाईएस्ट जो है सिंगल फेयर जो है वो आपसे शुरू में ले लेंगे. यानी कि कहने का इसलिए एक्सप्लेन करने का मकसद है कि कहीं ऐसा ना हो आप बैरी से चले तो आप कहते हैं कहें वो जी पहले तो मैं एक रुपया डॉलर देता था, अब मेरे से दो डॉलर मांग रहे हैं. वो इसीलिए मांग रहे हैं कि वो हाईएस्ट फेयर आपसे पहले ही चार्ज कर रहे हैं.
Exactly.
ताकि आपको बाकी ये छोटे छोटे फेयर जो चार्ज हैं इनसे आपकी जान छूट जाए. नहीं तो वो कहते हैं जी कि ये इनका बड़ा मुद्दा था इनके इलेक्शन का वोट साहब का, तो अब ये जाके उसको पूरा कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं जी कि ये सिंगल पेमेंट जो है उसमें आप पूरा अपना ये ट्रिप पूरा कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड. यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंथनी ब्लिंकन साहब जी वो फिर आज उधर सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए हैं और बस वो ये कहते हैं जी कि हमने इनको कहना है कि वो जो हमास ने पकड़े हुए हैं इनके बंदे इजरायली उनको छोड़े, तो हम ये जो हॉस्टेज डील है उसकी मैं बात करूंगा. अरब कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर खुश नहीं है. खासतौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बड़ी दफा कहा है कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड था जिसके अंडर ट्रंप साहब ने दोस्तियां कराई थी, तो सऊदी अरेबिया ने नहीं की थी, तो सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ दोस्ती करे. सऊदी अरेबिया ने जिस वक्त ये जब से ये जंग शुरू हुई है अक्टूबर 7 के बाद वो बल्कि पीछे हट गए. उन्होंने कहा जी कि अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसराइल के साथ दोस्ती का, बल्कि जो बाकी के भी जो अरब कंट्रीज हैं जिनकी दोस्तियां थी भी इसराइल के साथ वो पीछे हट गए हैं. बहरहाल जी ये अब उनको जाके कन्विंस करेंगे और ये मिलेंगे, इनकी मुलाकातें होंगी मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी और इनके जो काउंटर पार्ट हैं फॉरन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद उनके साथ भी होंगे. उसके बाद ये जाएंगे इजिप्ट, फिर कतर और फिर उसके बाद इसराइल. इस बीच में आपको पता ही है कि हमने आपको बताया था फ्राइडे को कि थोड़ी सी पॉलिसी यूएस ने अपनी चेंज की है इसराइल के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि ये जो सेटलर्स जो हैं जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये वायलेंस दिखा रहे हैं पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट. उसी के तहत फिर कनाडा ने भी एक पॉलिसी जो है वो स्टेटमेंट दी थी. आज फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जो है स्टीफेन सुजून उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो इसराइल है इसको सेटलर वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इमीडिएटली खत्म करने की जरूरत है, और ये बिल्कुल जो है पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते फोर्सफुली, और अगर इनको उन्होंने डिस्प्लेस किया तो कोई भी वहां पर गाजा या वेस्ट बैंक नहीं रहेगा. उसकी वजह यह है कि ये स्टीफेन साहब जो है ये भी मिडल ईस्ट के टूर के ऊपर आए हुए हैं और ये जो हैं बातचीत कर रहे हैं मिडल ईस्ट के लीडर्स के साथ. इसके बीच में कतर के फॉरेन जो मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है माजिद अल अंसारी उन्होंने कहा जी कि हमारी कुछ बातचीत चल रही है इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों के साथ. इजरायलीज की तरफ से भी हमको कुछ पॉजिटिव जो है कॉन्फर्मेशन आई हैं, हमास भी कुछ कुछ राजी है, तो हम ये न्यू पॉज की तरफ जाएंगे वॉर के, तो शायद कुछ चीज जो है थोड़े दिनों में आगे आने वाले वीक्स में ब्रेक थ्रू जो है उसमें आपको सुनाई देगा पता चलेगा. आज अमेरिका के अंदर जो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कॉर्नेल वेस्ट, अगर आपको इनके बारे में पता हो, बहुत बड़े ये स्कॉलर भी हैं, तो कॉर्नेल वेस्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल और यूएस दे आर इंटरट्वाइंड इन जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस, यानी कि इन दोनों की मिली भगत से ये सारा जेनोसाइड वहां पे चल रहा है। और वो कहते हैं जी कि यूएस वोटर्स जो हैं वो अब अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट फील करते हैं कि वो इन पॉलिसीज को खत्म नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि अमेरिकन जो लोग हैं वो किसके ऊपर जो है भरोसा करेंगे, जो नियो फैशिस्ट पाइड पाइपर है जो कि उनका जिक्र था कहने का ट्रंप की तरफ, और फिर वो कहते हैं या कि ये जो वॉर क्रिमिनल है डेमोक्रेटिक पार्टी का यानी कि बाइडन साहब जो है, तो दोनों को ही आज उन्होंने बहुत ज्यादा रगड़ा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि बाइडन साहब जो है वो एनेबल कर रहे हैं इसराइल को कि वो सऊदी इसका पैलेस्टीनियंस का जो है जीनोसाइड करे, और इसराइल जो है अगर उसको जो है अपनी ज्यूइश सिक्योरिटी बड़ी प्यारी